Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
Deepika, am I audible?
Hello, am I audible?
Yes, Deepika, now you're audible. Oh. Please say something about this program because we have another, like, you know, 1 minute, 1.5 minutes to go.
Yeah, yeah. First of all, welcome all. I think koi glitch tha, main baat kare ja rahi thi aur वो था और ओके सुदर्शन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. मनोज जी आज हम सुदर्शन जी की लिखी कहानी पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है कहानी बुनो प्रोग्राम में कोई भी कहानीकार बन सकता है. हम कोई ना कोई थीम हर बार या टॉपिक विषय कुछ भी देते हैं जिसपे कोई भी कहानी लिख सकते हैं अपनी तरफ से. नमस्कार वसीम जी, आपका स्वागत है.
क्या बात है, मेरे ख्याल से शायद कुछ ग्लिच आया है. सुदर्शन साहब
नमस्कार सबको.
आ गए हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम था. नमस्कार वसीम जी.
नमस्कार
वसीम जी, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है मुझे, बाकी सबको ठीक आ रही
है?
अब ठीक है, अब बेटर है वसीम साहब
जी.
बस 17, 16 minutes, 15, 14 and then you are good to.
Yes, countdown starts. 10 seconds to go. तो बाकी जो listeners हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है. ऐसे ही हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहिए और आते रहिए जी. ओके वसीम जी, शुरू करते हैं प्रोग्राम.
जी जी दीपिका जी, थैंक यू. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मिंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का 6वां एपिसोड. मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी और हमारे स्पीकर सजीव सारथी जी, मनोज जी. और आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं, सुनाते हैं बेहतरीन कहानियां और बात करते हैं कहानियों की बुनाई के बारे में कि कहानियां कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, छोटे छोटे टॉपिक्स पर, छोटे विषयों पर किस तरीके से कहानियां लिखें. दोस्तों अक्सर हमारी बम्बैया फिल्मों में दिल की बात कहने के लिए गानों का इस्तेमाल किया जाता है ना मनोज सर? फिल्मी गानों में जो दिल की बातें कहने की आजादी होती है, मुझे लगता है वो एक खूबसूरत आजादी भी है. फना फिल्म में आमिर खान गाते हैं कि चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता जो तुमको बता. तो मेरे ख्याल में यह वही आजादी है जिसे गीतकार प्रसून जोशी ने इस गीत के जरिए पेश किया है. जोशी जी ने नायक के अंदर की झिझक को ऐसे लिखा है जिसमें नायक चाहता है कि उसके दिल की बात को नायिका तक पहुंचाने के लिए चांद सिफारिश करे. कितना ही खूबसूरत ख्याल है ना ये. लेकिन मसला यह है कि ज्यादातर लोग इसका लुत्फ नहीं उठा पाते. कुछ लोग फौरन अपने दिल की बात कह देते हैं तो वहीं बहुत से लोग झिझक में रह जाते हैं कि आखिर अपने दिल की बात कहें तो कैसे कैसे. आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि दिल की बात ना कर पाने की सूरत में ही लेखनी का जन्म हुआ होगा. कहानी सम्राट प्रेमचंद को हम सब जानते हैं. उनके उपन्यास गबन में भी जब रमानाथ अपने दिल की बात नहीं कह पाते तो वे खत लिखते हैं अपनी बीबी जालपा के नाम. और उस खत को पाते ही जालपा के दिल में जो है एक गुबार जो था वो बाहर निकलाया कि आखिर क्यों ना उसने रमा के दिल की बात समझ ली, यानी अपने पति के दिल की बात उसे क्यों नहीं समझ में आई. लेकिन वो समझती भी कैसे, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, जब तक उसे खत मिला और रमानाथ तब तक प्रयागराज वो छोड़कर वो निकल चुके थे, कोलकाता जा चुके थे. उधर जालपा परेशान हलकान उन्हें खोजती फिरती है, काश कि रमानाथ अपने दिल की बात कह पाता. बहरहाल किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल के दर्द को लिखने लगा हूं मैं भी बाजारों में बिकने लगा हूं.
वाह वाह,
लेकिन ये तो रही और... शायरी और
आज की
तो
कहानी
शायरी और साहित्य को लिखने की बात
है आज की कहानी.
हाँ बट मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे, आ रहा हूँ कि वही कह रहा हूँ कि ये तो रही शायरी और साहित्य की बात, मगर दिल की बात को मुकम्मल करने के लिए अगर हम प्यार मोहब्बत या आशिक माशूक के दिल की बात ना करें तो मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रह जाएगी दीपिका जी.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
है ना. और अगर लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ तो ऐसा लगता है या ऐसा होता है अक्सर कि आपके कुछ कदमों की दूरी पर वो लड़की खड़ी हो जिसे आप प्यार करते हो, लेकिन मुश्किल है कि आप उससे अपने दिल की बात कहने से झिझक रहे हो. ऐसा अक्सर होता है और कहानियों में इसके बारे में बहुत बहुत लिखा गया है. धर्मवीर भारती बहुत बड़े कहानीकार हुए, उपन्यासकार हुए हैं. उनके उपन्यास गुनाहों का देवता में वो लिखते हैं कि कभी बड़ा कमजोर दिल का होता है, बेचारा अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता. क्या ही सच है कि लोग मजाक में कह देते हैं कि जो दिल की बात नहीं कह पाता वो शायर या कवि बनकर सब कुछ लिख देता है। बहरहाल हमारे इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है दिल की बात, इसमें शायर और कवि की सिर्फ बात नहीं है। हम आज के प्रोग्राम का दिल की बात में एक खूबसूरत टॉपिक, इस खूबसूरत टॉपिक पर सुदर्शन खन्ना सर ने एक अलग अंदाज में कहानी लिखी है। प्रेम मोहब्बत से अलग दिल की बात किसी भी तरीके से की जा सकती है। माँ बाप से भी कोई दिल की बात कहनी हो तो की जा सकती है, टीचर्स से दिल की बात कहनी हो तो की जा सकती है, लेकिन हम झिझक तो पाले ही रहते हैं ना। बहरहाल दीपिका जी, अब जी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सबसे पहले कहानी सुन ली जाए ताकि आगे की चर्चा की जाए।
जी बिल्कुल, आज की कहानी हमें सुदर्शन खन्ना जी ने भेजी है, दिल्ली से हैं, और कहानी का शीर्षक तो कुछ नहीं दिया गया है और मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं कोई अपनी तरफ से शीर्षक दूं। बस अब उनकी कहानी खूबसूरत है और कुछ अलग तरीके से दिल की बात कही गई है, तो प्रस्तुत है सुदर्शन जी की लिखी हुई कहानी।
जी बिल्कुल।
उस नौजवान मजदूर के दिल में कई दिनों से एक बात खटक रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर जिम में जा रहे उस लड़के ने क्या कहा था। वे अपने दिल की बात पूछे तो कैसे पूछे, सब मजदूर तो उसी की तरह अनजान थे। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यावसायिक भवन पर दिन रात काम चल रहा था, जहां बीसियों की संख्या में मजदूर पसीना बहा रहे थे ताकि भवन जल्दी पूरी तरह बन जाए, क्योंकि भवन के मालिक का हुक्म था। जुलाई अगस्त का उमस वाला मौसम, मजदूर पसीने से तर बतर हो रहे थे, फिर भी काम करने की उनमें गजब की शक्ति थी। काम करने की उनकी गति देखते ही बनती थी। अपने सिर पर एक साथ 20-20 ईंटें रख के चल रहे थे। कुछ मजदूर रेत, सीमेंट और रोड़ी का ढेर बनाकर उसमें पानी डालकर मसाला बना रहे थे। मसाला बनाने की मशीन तो थी पर अचानक खराब हो गई थी। मजदूरों के परिवारों की महिलाएं सिर पर तसले रखकर मसाला इधर से उधर पहुंचा रही थी। चारों ओर यही नजारा था। जब दोपहर के खाने का समय होता तो परिवार की महिलाएं ईंट के घेरे में लकड़ी जलाकर उस पर खाना बनाती थी। मजदूरों की खुराक भी बड़ी होती है, मेहनत जो करते हैं इतनी, मगर रोटी सेकने वाली महिलाओं के चेहरे पर ना कोई थकान दिखती ना कोई शिकन। खाना खाने के बाद भी आराम कहां, सिर पर पटका बांधकर चल पड़े काम पर। आखिरकार वो दिन भी आ गया। महीनों बाद भवन तैयार हो गया। उसमें अब बलशाली लोगों की तस्वीरें लगाई जा रही थी, कुछ मशीनें रखी जा रही थी, एयर कंडीशनर लग रहे थे। अब ये सब देखकर स्पष्ट हो चला था कि वहां एक जिम खुलेगा। जिम के अलावा बाकी भवन का काम अभी बाकी था, इसलिए मजदूर काम पर लगे हुए थे। वे आते जाते कौतूहल से शीशे में लगे हॉल से सजी मशीनों और तस्वीरों को देखते रहते थे। थोड़ी देर के लिए हॉल का दरवाजा खुला तो उसमें से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मजदूर हैरान थे, अरे वाह कैसी ठंडी बयार चल रही है। उस दिन जिम का उद्घाटन था। चमचमाती गाड़ियों में लोग समारोह में आ रहे थे। नौजवान लड़के और लड़कियां भी समारोह में शामिल थे। कुछ ही देर में जिम के मालिक कुछ बलशाली पहलवान नुमा लोगों के साथ आ पहुंचे। मजदूरों में भी उत्सुकता बनी हुई थी। नंगे बदन धोती पहने हुए अलग से खड़े हुए लोगों को के जमावड़े को देख रहे थे। साथ ही कुछ पतले कुछ मोटे लड़के लड़कियों स्त्री पुरुषों के झुंड भी आ रहे थे। यहाँ क्या होने वाला है, मजदूरों में ये जानने का कौतूहल बना हुआ था। उन्होंने उत्सुकतावश एक पतले से दिखने वाले लड़के को रोककर पूछा, भाई तुम यहां क्या लेने आए हो। वह लड़का खिलखिलाया और बिना उनकी ओर देखे बोला, अरे भाई मैं यहां अपनी सेहत बनाऊंगा, यहां मैं तगड़ा बनूंगा और मेरे सिक्स पैक्स होंगे। तुम्हें पता है सिक्स पैक एब, एब एब तो खराबी होती है, सिक्स पैक एब, पूरे 5,000 रुपए फीस भरूंगा, सिक्स पैक बनेंगे सिक्स पैक। मजदूर ने पूछा, भाई सेहत तो समझ आती है पर उसके लिए तो लोग डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं। फिर बड़बड़ाने ही लगा, होते होंगे यहां भी डॉक्टर, हम क्या जाने। पर भाई तुमने जो अभी कहा सिक्स पैक, ये क्या है? लड़के ने उनकी बात सुनकर अपने मोबाइल में से सलमान खान, ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम की तस्वीरें दिखाकर उनके सपाट पेट की धारियों की ओर इशारा किया, ये होते हैं सिक्स पैक्स, तुम क्या जानो। अब मजदूर कभी उन सितारों के पेटों की धारियों को देख रहे थे, कभी अपने सपाट पेट पर पड़ी 6 लकीरों को, जो अरसे से मिट्टी खोदते, फावड़ा चलाते, रेत गारा उठाते बन चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सितारों के पेट पर पड़ी धारियां अगर सिक्स पैक्स हैं, तो उनके पेटों पर पड़ी धारियां क्या हैं? अरे उठो, काम पर नहीं चलना क्या? इतना सुनना था कि जैसे तैसे वो उठा, नाश्ता करने के लिए निकल पड़ा। निकल तो गया, लेकिन उसके दिल की बात दिल में ही रह जाने वाली थी, क्योंकि मजदूरों की किस्मत में शायद दिल की बात पूरी होने की लकीरें ही नहीं होती, इसीलिए दिल की बात दिल में ही रह जाती है। धन्यवाद, बहुत खूबसूरत कहानी सुदर्शन जी।
बहुत खूबसूरत कहानी सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए ऐसी कहानी लिखने के लिए, मेंजा के लिए इस तरह की बेहतरीन रियलिस्टिक स्टोरी लिखने के लिए। आप सुन रहे हैं हमें तो प्लीज ज्वाइन सुदर्शन जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे
जी। सुदर्शन जी, हाँ जी, सुदर्शन जी की आवाज नहीं आ रही।
सुदर्शन जी, मेरे ख्याल से शायद ग्लिच है आपके उसमें नेटवर्क में, आप एक गुजारिश है, हाँ आप वापस आ जाइएगा, मेरे ख्याल से वो समझ गए हैं तो। लेकिन ये कहानी इतनी खूबसूरत थी वसीम साहब, कहानी इतनी खूबसूरत थी कि इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक ना तंज भी है, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने काफी जगहों पे देखा कि जो पल्लेदार होते हैं, जो ट्रक के ऊपर वो बोरियां लादते हैं मंडी में से, चाहे वो गेहूं की बोरियां हैं या मतलब इस तरीके की वीट की और चावल की, जिस तरीके से बोरियां वो लादते हैं, और उनके वो वाकई पेटों पे जो है ना वो इस तरीके की मतलब हम सिक्स पैक, हाँ सिक्स पैक एब्स कहते हैं उनके, पता नहीं कितने 8 या 10 ऑलरेडी बने हुए होते हैं क्योंकि वो इतने मेहनत कश मजदूर होते हैं। तो वाकई सुदर्शन साहब ने जो है वो बात को बहुत खूबसूरती से रखा कि जो स्टार्स हैं वो पता नहीं किस तरीके से बनाते होंगे अपनी, और हमारी तो खुद ब खुद बनती है क्योंकि वो हम मेहनत करते हैं। सुदर्शन साहब आ चुके हैं हमारे साथ, तो सुदर्शन साहब आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, हमसे बात करें।
सुदर्शन सर से बात करते, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है मनोज सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने गैस की बुकिंग की थी तो गैस वाला अपने साइकिल पर 4-4 सिलेंडर लेके गलियों में घूमता है, अक्सर दिख जाता है। तो जिस दिन वो सिलेंडर लेके मेरा आया, वो मेरा सिलेंडर उतार ही रहा था, तभी एक जिम से निकला हुआ लड़का उससे मोड़ पर टकरा गया और वो 2-3 टप्पा खा के दूसरे तरफ जा गिरा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो गिरा क्यों, और वो जो सिलेंडर वाला लड़का था पतला दुबला सा, उसमें इतनी जान थी क्योंकि वो 120 किलो सिलेंडर लेके वो डेली चलता है ना, और वो पतला दुबला था, उसके पेट पर भी रहा होगा, हालांकि दिख नहीं रहा था। तो मुझे यही लगता है कि जो सुदर्शन खन्ना सर ने जो कहानी लिखी है वो मजदूरों के सिक्स पैक जो बने हैं उनकी मेहनत से बने हैं,
और ये बहुत खूबसूरत कटाक्ष है, तो ये कटाक्ष भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो कह रहा है 50,000 रुपए दूंगा और सिक्स पैक बनाऊंगा, और हाँ। यहाँ देखो खून पसीना बहा कर उन्होंने सिक्स पैक बनाए हैं। ये
है यहाँ पर जो है दिन के 200-250 रुपए कमाने वाला जो है वो इतनी मेहनत करता है कि उसके अपने आप सिक्स पैक बन जाते हैं। तो सुदर्शन साहब से हम पूछना चाहेंगे, हाँ उनसे, खन्ना साहब से पूछना चाहेंगे कि उनके जब उन्होंने लिखी ये स्टोरी तो उनके जहन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। खन्ना साहब,
खन्ना सर प्लीज बताएं
जी, प्लीज। मुझे लग रहा है सुदर्शन जी की उसमें कुछ माइक में इश्यू है. सुदर्शन जी, जब तक आप वो म्यूट हो
सर,
गए हैं.
सुदर्शन सर आप अनम्यूट करें और प्लीज अगर बात कर सकें तो।
तो वसीम जी, अगर सुदर्शन जी अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वो आते हैं, तो हम क्या अगली कहानी का बारे में वो
हाँ,
करते हैं,
अगली
अगली
कहानी की
कहानी
बात
की
कर
थीम
लेते
के बारे में
हैं।
बात
अगली
कर लेते हैं.
अगली कहानी का टॉपिक आपको बताना है आज। मुझे लगता है कि आप बेहतर कहानी के लिए और बेहतर कहानी की।
खन्ना साहब आप एक बार ना खन्ना साहब एक बार आप ना ये लीव करें ये शो जो है, और दोबारा ज्वाइन करें। और आप बार बार मैं देख रहा हूँ कि आप अनम्यूट करने की कोशिश तो कर रहे
हाँ,
हैं
वो हो नहीं
लेकिन
पा रहा
आवाज
है
नहीं आ पा रही है। तो एक बार आप कोशिश
शायद
करें, एक बार कमरा, हाँ एक कमरे को आप
सर,
एक बार ऑफ करें और फिर वापस आ जाइए।
या कुछ
मनोज
अगर
सर मुझे
वो
लगता है कि हेडफोन या ईयरफोन लगाया
अब
हुआ
आ रही है
उन्होंने, इसको
आवाज
ही शायद.
अरे
जी
हाँ,
जी
खन्ना
बिल्कुल,
साहब
मेरा
आ
भी
गए।
आपका स्वागत
वेलकम
है सर.
वेलकम,
आइए
स्वागत है आपका खन्ना साहब।
आइए, स्वागत है.
मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे मंच से जुड़ा हूँ कि जिसमें इस तरह की रियलिस्टिक यथार्थवादी कहानियों पर तवज्जो दी जा रही है।
सर
ये वाकया एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा. तो कहानी तो मैंने बुनी, लेकिन मैंने मजदूरों के ऐप्स और वहां जो बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स आ रहे थे, जो अपने शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको देख करके मेरे जहन में ये कहानी उभरी और मैंने इस तरह का ताना बाना बुना. इन मजदूरों को कभी भी कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, जो कि बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले अक्सर इसी चीज के पीछे दौड़ते हैं कि कुछ प्रोटीन मिल जाए या कुछ ऐसा पाउडर मिल जाए कि जिससे उनके मसल्स बन जाएं, सिक्स पैक्स एब बन जाएं उनके. तो ये कितना एक रियलिस्टिक है कि मजदूर दिन भर की अपनी मेहनत करता है, चाहे वो बिल्डिंग का निर्माण करने वाला हो, या वो रिक्शा चलाने वाला हो, या मार्केटों में बोझा उठाने वाला कोई भी हो, और कहाँ लोग पैसा खर्च करके जाते हैं इतना. ये एक बहुत ही आपस में इतना विरोधाभास है जो मेरे मन को छू गया और मैंने उसे कहानी का एक रूप दे दिया.
जी बिल्कुल सुदर्शन जी,
और
बहुत,
दीपिका जी ने
लेकिन
बहुत
सुदर्शन
सुंदर आवाज में इसकी
सर
प्रस्तुति दी है.
थैंक यू सो मच, धन्यवाद.
खन्ना सर, लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी जो शहरों में ऑफिस जा रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है या जिसको एक्टर बनना है तो वो इस तरीके का बोझा नहीं उठा सकता या वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें इस तरीके का मेहनत हो, तो वो ऑब्वियसली जिम के तरफ जाएगा। तो क्यों आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा आपने कहानी?
ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये सवाल आपने बिल्कुल ठीक उठाया है. हमारे
जी
लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुके हैं. जब हम कहते हैं कि लोग इस तरह से ऑफिसेज में जा रहे हैं या मल्टीनेशनल कल्चरल का एक हिस्सा बन रहे हैं, तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ये सुविधा दे रही हैं जो कि एक आम आदमी को नहीं मिल सकती हैं. ये बहुत अपने अच्छा प्रश्न उठाया है. लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने में आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, अब कोताही बरतती है. अगर वो कुछ ऐसे काम जो अपने घर में कर सकें, तो वो भी इस तरह का अपना जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार ला करके इस तरह का शारीरिक सौष्ठव पैदा कर सकते हैं.
बिल्कुल सही कहा आपने खन्ना सर, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कमेंट में फेसबुक पर कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि लोग घर में अपना जरा सा छोटा सा काम नहीं कर सकते लेकिन जिम में जाकर घंटों पसीने बहाएंगे। तो ये है, तो ये मुद्दा तो है, और इसलिए आपने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपिका जी मैं
जी
चाहूंगा कि एक बार अगले सप्ताह के टॉपिक पर चर्चा कर लीजिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल. अब मुझे लगता है अगला टॉपिक जो है ना, कुछ मौसम और उसमें क्या बोलूं कि कितनी समस्याएं हैं ना, उससे लेना चाहिए. जैसे गर्मियां आ गई हैं और गर्मी में बहुत समस्याएं होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पानी. नहीं वसीम जी,
हाँ वो तो किल्लत है, वो तो
अरे
किल्लत होती
नहीं नहीं यहाँ मैं
है।
पानी की किल्लत की बात नहीं कर रही हूँ. ये हर उस घर की एक गंभीर समस्या की बात कर रही हूँ जहाँ है फ्रिज. और जी हाँ, फ्रिज की बोतल का पानी पी तो सब
जी
लेते हैं, भरे कौन.
इसका मतलब कि एक और रियलिस्टिक स्टोरी हमारे पास आने वाली
बिल्कुल. और
है।
इसी से कितनी कहानियां बनती हैं. अभी उस दिन वो आजकल मीम्स का रिवाज है ना, तो उसमें ही मैं पढ़ रही थी कि गर्मियां आ गई हैं, पानी जब आप बोतल खाली करें तो भर के रखें, नहीं तो बात पानी की बोतल से शुरू होगी और गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और आपके रिश्तेदारों तक जाएगी. तो ये भी है, और बस अगली कहानी की यही थीम है कि आप इसको गंभीर समस्या समझें या व्यंग में लिखें, अपने अनुभव कहानी के रूप में भेजें। और
मुझे मुझे लगता है दीपिका जी कि इस पर कॉमिक कहानी भी चल सकती है और
जी, बिल्कुल
बन सकती
यही
है।
मैंने बोला या व्यंग लिखिए।
और अभी मैं कुछ ही दिनों पहले जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई थी तो फेसबुक पर किसी ने कहा था कि गर्मियां बढ़ गई हैं और फ्रिज में जाओ शाम को घर से ऑफिस से घर पहुंचो तो फ्रिज में पानी ही नहीं मिलता, बॉटल ही नहीं मिलता, यानी कि खत्म हो चुका होता है। तो किसी लड़की ने लिखा था कि ये फ्रिज जो है ना अपना बॉटल क्यों नहीं भर लेता, हम क्यों भर के रखें।
क्या बात है,
ये बड़ा ये स्टेटस था, बल्कि उसके फेसबुक का स्टेटस था, वो पोस्ट था। मुझे हंसी आई मुझे कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, इसका मतलब कि इसमें भी एक काम चोरी है कि हम पानी पीना तो चाहते हैं फ्रिज का बॉटल, लेकिन बॉटल भर के रखना नहीं चाहते हैं, और फ्रिज से ही ये चाहते हैं कि ये वही फ्रिज भी भर ले। तो इस पे एक फनी कहानी भी हो सकती है। बाकी मनु सर से मैं चाहूंगा कि कुछ
पहले एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है टॉपिक, तो मैं ये बता दूं कि ये पानी में फ्रिज की बॉटल रखने की समस्या से लेकर के आप कोई भी कहानी अगर आप चाहें तो पानी रे पानी ठंडा ठंडे पानी की कहानी ये मैं कह सकता हूं,
ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं
बिल्कुल।
वाकई बहुत ही खूबसूरत ये आपने टॉपिक दिया, और आप देख रही हैं कि हमारे साथ एक और शख्स जुड़ा हुआ है, मरियम साहिबा हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं।
जी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है मरियम जी।
तो मरियम अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप कुछ कहें, अगर आप शिरकत करना चाहें, आप स्पीकर पैनल पे हैं, अगर आप तक आवाज आ रही है तो जरूर कुछ कहें अनम्यूट करके अपने आप को।
बिल्कुल मरियम जी, आपका स्वागत है, हम सुनना चाहेंगे आपको।
मरियम ने कॉल
जी,
हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी, पानी के ऊपर बात करें तो मैं कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ कि मैंने भी कुछ आर्टिकल लिखी थी कुछ दिन पहले, मेंस्टा में किया था कि इंडिया में पानी की बहुत सारे प्रॉब्लम है और कुछ
मरियम साहिबा थोड़ा सा ना आपका नेटवर्क का मेरे से ग्लिच है, थोड़ी सी कम आ रही है।
अच्छा,
और आज और मरियम साहिबा आज की कहानी के बारे में कहें, अगली कहानी में जब है वो आप जरूर शिरकत कीजिएगा, ठंडे पानी के लिए आप भी कुछ लिखिएगा, लेकिन आज की कहानी जो पढ़ी गई उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें।
उसके बारे में तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी बात का ये बहुत ही गहराई में लिखी हुई है, और इधर आपने मजदूर के ऊपर भी अपने कहा हुआ है क्योंकि कुछ शब्द में इतनी गहराई में इतनी गहरी बात बोल दी कि मजदूर कितनी मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग उनको देखते नहीं, उनके अगर टी शर्ट उठा कर देखे तो कितने सारे एप्स मिलेगी, 6 ऐप नहीं बहुत सारे एप्स मिलेंगी, और जो अमीर होते हैं उनके तो टी शर्ट उतार उतार कर दिखते हैं कि एक एप्स मिले या दो एप्स मिले, कितने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इस कहानी में इतनी गहराई में आपने लिखा हुआ है कि घर मतलब कैसे समझाऊ, बहुत ही गहराई में लिखी है और मुझे बहुत ही पसंद आए।
बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको आह्वान करूंगा कि वो अगली कहानी सोमवार तक भेज दें, और कहानी भेजने के लिए शब्द संख्या है 500 से 700 शब्द, इससे ज्यादा इससे लंबी कहानी इससे बड़ी कहानी ना भेजें। और कहानी भेजने के लिए मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com, इस पर अपनी कहानी भेजें, ज्यादा से ज्यादा कहानियां भेजेंगे तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए और अच्छी कहानियों को सिलेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली क्लू बेस्ड सर्किल है, क्लू बेस्ड प्रोग्राम है, हम हर सप्ताह कुछ न कुछ एक टॉपिक या एक ऐसा विषय देते हैं, एक ऐसा शीर्षक देते हैं, एक ऐसा थीम देते हैं जिस पर आप कहानियां लिखते हैं, और कहानियां आती भी हैं। इस बार सुदर्शन जी की कहानी आई, अगली बार इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आएंगी और भी अच्छे अच्छे विषय और टॉपिक्स उठाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोशल अवेयरनेस की चीजों को उठाएं, क्यों दीपिका जी?
जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी उस पे आप व्यंग लिखिए, कभी आप गंभीर हो जाइए, हंसी मजाक और सीरियसनेस मिली जुली कहानियां भी लिख सकते हैं, तो किसी भी तरह की कहानियां आप भेजिए, और मैंने यहाँ कमेंट में मेंशन कर दिया है टॉपिक और हमारा जीमेल आईडी। और वसीम जी, मैं बस ये कहानी की टॉपिक बताने के लिए मैं फिर से ये कहना चाहूंगी एक कबीर जी की तर्ज में कि फ्रिज की बोतल निकाल के ठंडा पानी पी, फ्रिज की बोतल निकाल के ठंडा पानी पी, बोतल खाली कर दी, अब कौन भरेगा जी।
वाह वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब कहा,
क्या बात है, क्या बात है दीपिका, वाह वाह,
कितनी जल्दी सृजन कर लिया।
यही तो हमारी इस सर्किल का जो है थीम है कि हम कितना जल्दी सृजन कर लेते हैं, कितना जल्दी थीम को, टॉपिक को पकड़ लेते हैं, और इसलिए और ज्यादा से ज्यादा कहानियां आती हैं हमारे पास और हम उसमें से बेहतरीन कहानी सेलेक्ट करते हैं।
जी, तो बस हम ये उम्मीद करते हैं अब भी बहुत, हाँ वसीम जी, बहुत सारी कहानियां आएंगी हमारे पास अच्छी अच्छी
इंशाल्लाह।
और इंशाल्लाह। जो लिसनर्स को हम बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, सुदर्शन जी, मरियम जी, मनोज जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ
बहुत शुक्रिया।
अगले बुधवार को 9 बजे हम मिलेंगे
और कल जो है वो शायरी जोन को, शायरी जोन में आना ना भूलें,
साढ़े 8 में भी हम हाजिर रहेंगे। तब तक सुनते रहिए तमाम बेहतरीन मंजा पर बढ़कर
कहानी सोचिए, कहानी बनाइए।
प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सुदर्शन,
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका,
बहुत बहुत धन्यवाद, एक नई दिशा प्रदान की आपने।
जी बिल्कुल, आते रहिए,
बस आप बने रहें सुदर्शन साहब और आते रहें हमेशा,
अवश्य
हमारे साथ बने रहें।
थैंक यू सो मच, गुड नाइट।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.